जिन के गुणों के गान में ये वर्धमान महान दिन बित रहे हमारे। जो पिछली गाथाएं थी ये कलई वाली और उनके बाद जो कलश थे उनका निष्कर्ष चार लाइनों में दिया है, आपकी किताब है 378 पेज 371। निष्कर्ष के रूप में इस प्रकार इन कलशों में यही कहा गया है कि स्व और पर सभी को जानना आत्मा का स्वभाव है, विभाव नहीं। परगेयों के जानने से न तो ज्ञान गेय रूप होता है और न गेय ज्ञान रूप होते हैं, दोनों पूर्णतः असंपृक्त ही रहते हैं। अतः पर को जानने में अपराध बोध होने की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं। यानी कुछ लोगों को दूसरे की तरफ हमारा निगाह चली गई ना, तो उसमें ऐसा अपराध बोध होता है इसे मेरे लिए बहुत बड़ी गलती हो गई। यदि तुम्हारा परपदार्थ ज्ञान का गे बना और उस वक्त कोई तुम्हारा रागात्मक विकल्प खड़ा हुआ या तो देशात्मक, तो वो जरूर अपराध है। लेकिन रागात्मक और देशात्मक देश खड़ा नहीं हुआ तो जानने मात्र से रंत मात्र भी अपराध नहीं है, बल्कि उसका वो स्वभाव है। जब कभी ऐसा होता है ना तो कि कोई आदमी इस बात पर अपराध करता है कि तो वो कहता है कि भाई क्या करें, आंखें फोड़ लें? कहता ना, यदि हम रास्ते पर चलेंगे तो आंख तो खुली रह करके ही चलना पड़ेगा ना, नहीं तो एक्सीडेंट नहीं हो जाएगा। वास्तव में लोक में जो हमें देखने का निषेध करते हैं वे तो वास्तव में घूर घूर कर देखने का निषेध करते हैं, पर हम समझते हैं वो दूसरे को देखने जानने का निषेध है। यदि ऐसा सहज देखना जानना हो तो कभी किसी को भी ऑब्जेक्शन किसी पर नहीं होता है कि तुम क्यों ऐसा देख रहे, क्यों ऐसा कर रहे, तो विकल्प भी नहीं आता है। लेकिन यदि जब ज्यादा देखो वो ज्यादा तो देख लो, हमने अपना मकान बनाया अच्छा, उसका एलिवेशन बहुत बढ़िया बनाया, हम अपने घर के अंदर बैठे हैं तो हमने वो एलिवेशन काहे के लिए बनाया, लाखों रुपया उसमें खर्च किए हैं कि लोग देखें कि नहीं देखें, उससे कोई आराम नहीं मिलता है, समझे ना। फिर ऐसा बनाया बहुत बढ़िया कि लोग आकर के देखें और देखते ही रह जाएं, तो लोग देखें नहीं तो हमें दुख होता है, देखें तो दुख नहीं होता है। लेकिन वो आदमी बराबर घंटे भर तक देखता रहे, खड़ा रहे, चारों तरफ चक्कर काटे हैं, तो हमको बहुत घबराहट हो जाती है कि हम पुलिस में दे देंगे इसको, हम उससे जाके टोकते हैं भाई क्यों। और वो कहेगा आपने काय के लिए बनाया, देखने के लिए नहीं बनाया, यहां देखने के लिए बनाया है, तो मैं देख ही तो रहा हूं, क्या कर रहा हूं। नहीं नहीं, जिस तरह तू देख रहा है उस देखने में देखने के अलावा भी कुछ और है, तो वो जो कुछ और होता है निषेध उसका होता है, अपराध वो है। ख्याल में आया ना, जो है वो अपराध नहीं है। इसको हम और ज्यादा सरलता से समझें कि आजकल हमने मंदिरों को बिल्कुल कांटों से जड़ दिया है, जगह जगह जाके देखेंगे हर मंदिर को कांच का मंदिर बना दिया है, चारों तरफ चारों तरफ भगवान के दर्शन तो जब होंगे अपने ही अपने दर्शन होते रहते हैं। जैसे घर से जब मंदिर जाते हैं तो अपने दर्शन करके अच्छी तरह से जाते हैं, जैसे खूब अच्छी तरह देख के, है ना। फिर वहां जब अब एक आदमी प्रदक्षिणा दे रहा है, अब वो बेदी के पीछे से ऐसा आया और सामने बहुत बड़ा दर्पण लगा, तो उसके पीछे कोई आएगा तो वो भी उसे उसमें दिखेगा क्या नहीं? जब उसे दिखेगा तो वो अपराध है क्या? क्यों? जो आंख बंद करके तो चल नहीं सकता, आंख बंद करने के पहले तो पैर बंद करना चाहिए। और यदि कोई पीछे महिला आ रही है तो वो उसे दिखेगी कि नहीं दिखेगी? तो वो शिकायत कर सकती है, किया आज तक किसी महिला ने ऐसी शिकायत, लेकिन वो देख करके एकदम ऐसा देखे तो फिर उसे शिकायत हो सकती है, मैंने और उसे ज्यादा देखने का भाव आया, दिख गया ना जो दिखने लायक था, जो जानने के लिए जरूरत है कोई पीछे है तो मतलब मैं अपने सावधानी से चलूं, तो इसके लिए कोई नहीं रोकता आपको। तो वो जो देखने देखने में जो फर्क है उसके अंतर को हमें समझना चाहिए। उसे नहीं समझने से क्या दिक्कत होता है कि सामान्य जानना देखने को भी हम अपराध समझ लेते हैं। वो जो रुचिपूर्वक देखना किसी चीज को, राजपूर्वक देखना वो एक अलग बात है और वैसे सामान्य तरीके से देखना अलग बात है। अब इन दोनों का अंतर समझने के लिए मैं एक और बात कहता हूं कि किसी ने हमसे पूछा कि फला आदमी का आपने लड़का देखा कि लड़की देखी, हाँ तो जी ने देखते ना, मंदिर में आते, दर्शन में आते, पूजन में, पाठ में सब शामिल होते, ट्विटर में बैठते, क्यों नहीं देखे, देखा नहीं, क्यों, क्या बात है, नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसे जरा मेरे को जानना था आपसे मैं भी पूछ लू, ऐसा नहीं देखा। एक सेकंड में हम पीछे हट जाते हैं, हमने जिस दृष्टि से तुम देखने की बात कहते हो उस दृष्टि से नहीं देखा। तो रोजाना देख करके भी ये कोई अलग दृष्टि होती है कि हम उस दृष्टि से नहीं देखते हैं। अब आप कह रहे हो तो मैं देख के देखूंगा, देख कर देखूंगा, होता क्या नहीं होता, बोलिए, यानी दिन ना रात देखने पर भी उसे हम नहीं देखना बोलते हैं, उसका क्या अर्थ है कि किसी चीज को आप किसी विशिष्ट निगाह से देखो, उसके पीछे श्रद्धा और चारित्र जो है ना, ये दो किस तरह से उस देखने को प्रभावित कर रहे हैं, उस पर सारा अपराध निर्भर करता है। मैंने कल बोला था ना कि श्रद्धा गुण पर से उसे कोई लेना देना नहीं है, और चारित्र गुण को भी पर से लेना देना नहीं है, निर्मलता होनी है तो आत्मा का अनुभव करना है तो उसे पर की कोई जरूरत नहीं है। पर अब वो ज्ञान गुण स्वपर प्रकाशक स्वभाव है, अपने स्वभाव से वो भले ही कितना देश है, लेकिन जब कोई श्रद्धा गुण या चारित्र गुण के आश्रय से इशारे से इधर ऐसे ढंग से देखना क्या, तो जब वो ज्ञान उस श्रद्धा से और चारित्र से प्रेरित होने लगता है तब से वो अपराध की सीमा में आ जाता है। तो हमको इस बात को बहुत गहराई से समझना चाहिए कि सामान्य जानने में रंच मात्र भी अपराध नहीं है। देखो अब आगे की गाथाएं, अब जो एकदम प्रकरण थोड़ा बदलेगा, अभी तक जो अपनी बात चल रही थी ना वो तो ज्ञान और गेय की मुख्यता से चल रही थी कि भाई तुम गेयों से को जानने से घबराओ मत, गेयों को जानना कोई अपराध नहीं है, उसे अपराध बोध होने की आवश्यकता नहीं है। और अगले जो गाथाएं आ रही हैं शायद कितनी, चार पांच है, कितनी है, छह गाथाएं हैं, उन गाथाओं की उत्थान के आगे ये कलश हैं। पढ़ो शांति जी, कौन सा 217 तब तक पहले है और जब तक बाद में है। शब्दों का प्रयोग ऐसा नहीं होता है, हमेशा जब तक पहले आता है वो तब तक बाद में आता है। जहां जहां आगे विरुद्ध तहां आता है ना, पहले तहां बोले फिर बाद में जहां बोले, पहले जब तक बोलना चाहिए बाद में तब तक बोलना चाहिए, लेकिन इसमें उल्टा है। उल्टा छप गया है क्या है? क्या उल्टा है ही? इसे ध्यान दो, मेरी तरफ मत देखो, उसे देखो, छंद को, छंद को देखो तो आपको ख्याल में आएगा। कहते हैं कि जब हे भाई, जब तक ज्ञान और विवेका के बीच में जो भेद ज्ञान उदित नहीं हो तब तक राग देश होते हैं। अब आया समझ में? फिर पढ़ो कि राग देश कब तक होते हैं? कि तब तक होते हैं कि जब तक हे भाई ज्ञान और विवेक का भेद हमारे ज्ञान में उदित ना हो। इसलिए है वो, मतलब उल्टा नहीं है लेकिन छंद में वैसा नहीं बन, चले लेकिन ऐसा बनता कि हे भाई जब तक ज्ञान गे का भेद ज्ञान में उदित नहीं हो तब तक राग देश होते हैं। ये तो गद्य तो बन गया, अब पद्य उसको पद्य में ढालने के लिए इतना परिवर्तन बहुत जरूरी था। क्या क्या वहां भी ऐसा ही है, तावन है, रावत के पहले तावत है, रावण के बाद तावत आना चाहिए ना, फिर मूल छंद में भी ऐसा ही है भाग्य से। तो कहते हैं ज्ञान गेय का भेद समझकर राग देश को मैं तो पूर्णतः पूर्ण ज्ञान में तुम हो जाओ। इसलिए भैया ज्ञान और गेय का भेद समझकर तुम राग देश को छोड़कर तुम पूर्ण ज्ञान में हो जाओ। अब मैं ये पूछना चाहता हूं सब पंडितों से कि इसमें राग देश को मेट किस शब्द का अर्थ है? ऊपर से आप समझ में आए? भाला भावु मैंने एक अद्भुत प्रयोग है, भाव और अभाव, भाव माने राग और अभाव माने द्वेष। सामान्य तरीके से समझ में नहीं आता है, जब आगे पीछे से उसका अध्ययन करते हैं, गहराई से मिलान करते चले जाते हैं, तब फिर ये आता है कि इसका अर्थ यहां इसका ही होना है। वो ये कहते हैं कि तुम ज्ञान और ज्ञेय का भेद समझो। देखो चौराला जैसे ग्रंथों में अथवा जो भी थोड़ी अध्यात्म की चर्चा करते हैं साधारण से साधारण लोग, वे देह से भिन्न भगवान आत्मा की बात करते हैं, है ना? शरीर जुदा है और आत्मा जुदा है, और जो इसकी जुदा की बात करते हैं वो अध्यात्म है, और जो ये दोनों एक हैं तो वो अज्ञानी उन्हें अपन कहते हैं। अब यहां पर देह की जगह गे हो गया, क्या हुआ है? देह की जगह गे हो गया, वो जब महाअध्यात्म परम अध्यात्म हो गया समय सार का, वो कहते हैं कि देह की बात थोड़ी है, जो भी पदार्थ हमारे ज्ञान के गे बनते हैं माने जानने में आते हैं, हम उन सब से ही अपनापन स्थापित कर लेते हैं, अपनापन स्थापित कर लेते हैं ना, यानी उनमें हम अपने और पराये में बांध देते हैं बस। जब कोई भी यहां कोई ये चीज पड़ी हो, यहां ये रूमाल पड़ा रह जाए तो फिर ये रूमाल किसका है? तो रूमाल रूमाल है ना, रूमाल पर्याप्त नहीं है, लेकिन हमारे यहां ये किसका है? मेरा कहने का मतलब ये है, ये जो हमारी झंझट हमारे दिमाग में खड़ी होती है, यानी हमें श्रद्धा गुण प्रेरित करता है कि अपने और पराये की पहचान करो, इसमें अपना और परायेपन का भेद डालो, समझे ना? राग करता है कि अच्छा है या बुरा है, ये चारित्र गुण में राग द्वेष चारित्र गुण का काम है। तो जो हमको राग पैदा करता है यह बहुत अच्छी चीज है, मुझे मिल जाएगी कहीं, तो ये राग का काम है, तो इस ज्ञान को इस राग ने प्रभावित किया और तो किसका है यहां पर श्रद्धा गुण ने प्रभावित किया तो उसमें अपने परायणी पहचान की बात हो रही है। तो वो कहते सारे जो गेय हैं ये इन सारे गेयों में जो अपने त्रिकाली देह आत्मा को छोड़कर बाकी कोई अपना नहीं था इसमें जो अपने और पराये का भेद डाल देता है तो इसका नाम है ज्ञान और गेय की सही पहचान नहीं होना। और जो गेय हैं अपने आत्मा को छोड़कर वे सब मैं हूं ही नहीं मैं कभी हो ही नहीं सकता मैं उनका स्वामी कभी हो ही नहीं सकता मैं उनका कर्ता भोक्ता कभी हो ही नहीं सकता ऐसा जो विवेक पूर्वक ज्ञान है उसको यहां वास्तविक ज्ञान कहते हैं। उनमें जो भेद डालने की क्या जरूरत है अपने ज्ञान और गेय के बीच भेद डालो तुम सब पर गेय की बात है अपने आत्मा की बात नहीं है। तो ये जो जितने भी ये मेरे ज्ञान के गेय बन रहे हैं वे मैं नहीं हूं मेरे नहीं है और वे राग करने लायक नहीं है। राग बे क्या राग तो कोई भी हो करने ही लायक नहीं है ना। अरे भाई अपने से प्रेम रखो दूसरे से प्रेम मत रखो। अरे प्रेम तो राग का नाम है भाई साहब अपने में अपनापन रखा जाता है। राग की राग तो अपने में भी होगा तो राग ही होगा वो उस राग कोई भी वितरागता नहीं हो जाएगा वो तो राग तो बंध का ही कारण होगा। उस स्वपर के भेद विज्ञान में उसे स्व जानो ये बात हो सकती है श्रद्धा में स्व स्वीकार करो। तो कहते जब तक ज्ञान और गेय में भेद नहीं हो जाता तब तक राग द्वेष उत्पन्न होते रहेंगे। मतलब सही भेद विज्ञान नहीं हो जाता यानी कैसा बात यही तो हम कर रहे हैं ना कि हम भेद विज्ञान कर रहे हैं कि ये किसका है अभी तुम्हें क्या तकलीफ है। कहते ये इसमें रूमाल में ये किसका प्रश्न खड़ा होना ये हमारे अज्ञान को सूचित करता है समझे ना क्योंकि ये हमारा संपर्गेय है स्वगेय नहीं है वो परगेय पर ही होता है स्व कभी होता ही नहीं है तो उसमें स्वपर का भेद विज्ञान कैसे कर रहे तुम। तुम्हारा जो प्रश्न है ये प्रश्न ही सही नहीं है। कहते ज्ञान और गेय का भेद तुम्हारे ख्याल में आ जाए तो तुम सारे लोकालोक को जानो ना कोई दिक्कत नहीं है। एक बात मैं इस वक्त और भी कहना चाहता हूं बहुत मार्मिक है मैं सुनता रहता हूं तो मुझे कभी कभी बार बार शक होता है कि भाई लोग इस बात को सही तरीके से समझे कि नहीं समझे। खासकर कौन सी बात है कि जैसे छठवें गुणस्थान में जो मुनिराज हैं तो कहते सुहोपयोगी हैं और सातवें में है वो शुद्धोपयोगी हैं तो जैसे छठवें में बंद होता है और सातवें में निद्रा होती है ऐसा हमारे दिमाग में घुसा हुआ है क्योंकि शुद्ध भाव से बंद होता है शुद्ध भाव से निद्रा होती है। इसलिए वे मुनिराज जो सच्चे मुनिराज निश्चय से मुनिराज तो वे ही है कौन सातवें गुणस्थान वाले और छठवें वाले तो शुद्ध भाव वाले हैं तो ये मुनिराज ये द्रिवलिंगी है फटाफट छठवें में आए तो द्रिवलिंगी हो गए और सातवें पहुंचे तो वे भावलिंगी हो गए। इसके बाद समय साल लिखते हुए कुंदकुंद द्रिवलिंगी थे। ये बिल्कुल सही नहीं है। छठवें गुणस्थान में भी उतनी ही लगभग उतनी ही निर्जरा होती है जितनी सातवें गुणस्थान में होती है। आप क्या कह रहे क्यों वो तीन कसाई के अभाव रूप जो शुद्धि है वो निर्जरा तो उससे हो ही रही है आता ना असंख्य गुण निर्जरा तो उसमें स्थान है कि नहीं छठवें गुणस्थान का सम्यक दृष्टि श्रावक वृत्ता अनंत वियोजक तो उसमें छठवें गुणस्थान का भी एक स्थान आता है तो वो निर्जरा तो हो ही नहीं वो उधर कैसे द्रिवलिंगी हो गया सुपयोग में आते ही। अरे हर मुनिराज को द्रिवलिंगी और भावलिंगी दोनों ही होना चाहिए। यदि वो द्रिवलिंगी नहीं है तो भावलिंगी हो ही नहीं सकता। ऐसा तो हो सकता है कि भावलिंगी ना हो अकेला द्रव्यलिंगी हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि वो द्रव्यलिंगी ना हो और भावलिंगी हो जाए। नग्न दिगंबर दशा के बिना, समझे ना, वो मुनिराज मुनि दशा सिद्धोपयोग रूप मुनि दशा होती ही नहीं है। इसलिए वो आना जाना बहुत छोटी चीज है। छठवें सातवें में देखो, पांचवें गुणस्थान में क्या है, पांचवें गुणस्थान में शुद्धोपयोग भी शामिल है और शुभोपयोग भी शामिल है, और छठवें में अकेला शुभोपयोग भी अन्याय नहीं है। चौथे में भी दो दिन शामिल है। तो कहते हैं भाई इतना कम है शुद्धोपयोग, इसके लिए हमने चौथे और पांचवें के दो टुकड़े करना ठीक नहीं समझे, और वहां छठवां और सातवें में इतना जल्दी जल्दी होते हैं दोनों, इसलिए हमने वहां दुबला गुण स्थान रख दिए। तो इसमें छठवें का क्या अपराध हो गया, पांचवें गुणस्थान वाले के दो कषाय का अभाव है, अनंतानबंदी और अप्रत्यक्षानबंद, और छठवें वाले का तीन कषाय का अभाव है। बोलो निद्रा किसको ज्यादा हो रही, पांचवें वाला शुद्धोपयोग में है, आत्मा का ध्यान कर रहा है, उससे भी असंग गुणी निद्रा शुभोपयोग वाले छठवें अनुष्ठान वाले मुनिराजों की होती है। क्या, हाँ, आराधी करते हुए भी, विहार करते हुए भी, उपदेश देते हुए भी, ये लिखते हुए भी, तो मतलब कुछ ज्यादा ही मतलब वो हो गया है, जैसे कि भाई शुभोपयोग ये है। जैसे कि वो एक दफे मैंने प्रवचन सार में का पद्यानुवाद किया था, शुद्धोपयोगी मुनि है और शुभोपयोगी भी मुनि है ना, तो मैंने ऐसा लिखा था संतान लोग से, शुभोपयोगी मुनि है शुद्धोपयोगी भी मुनि, तो ऐसा था कि नहीं साहब हमने अलर्ट दिया गलत है, पहले बोल लिखना चाहिए शुद्धोपयोगी, क्यों क्यों लिखना चाहिए पहले, नहीं छठवा अनुष्ठान पहले। अरे भाई मैं वो तो ये बता रहे मुख्यता इस वक्त वो यहाँ शुद्धोपयोग की मुख्यता मुख्यता है, ऐसा थोड़ी है तुम्हें शुभोपयोगी जो मिथ्या दृष्टि है उन्हीं की बात कर रहे हैं वो, मुझे हम क्या समझते हैं द्रव्यलिंगी माने मिथ्या दृष्टि। द्रव्यलिंगी चार प्रकार के होते हैं, पहले गुणस्थान वाले, चौथे गुणस्थान वाले, पांचवें गुणस्थान वाले, छठवें गुणस्थान वाले और सातवें वाले भी होते हैं, और लेकिन तेरहवें गुणस्थान वाले भी होते हैं, द्रव्यलिंगी और भावलिंगी दोनों, ऐसा नहीं है ना। इसको हम ऐसे समझने लग गए कि साहब बहुत से लोगों के आप हम लोगों को द्रव्यलिंगी मानते हैं, मैंने किन बेवकूफ ने कहा आपसे कि हम आपको द्रव्यलिंगी मानते हैं। अब अपने मन से द्रव्यलिंगी मानते हैं, द्रव्यलिंगी मानते हैं। क्यों द्रव्यलिंगी दशा नहीं होती, तेरे गुणस्थान में पहले एक परिभाषा समझ रख लू आज मैं सिखाता हूं आपको, कि वो जो शुद्धोपयोग आत्मध्यान की दशा है उसका नाम है भावलिंगी, और उसी समय जो शुभोपयोग रूप दशा है और नग्न निगम्बर रूप दशा देह की दशा, इन दोनों का नाम है द्रव्यलिंगी, और दो में एक हो तो भी द्रव्यलिंग है, शुभोपयोग तो नहीं है लेकिन नग्न निगम्बर दशा तो है कि नहीं है, तो द्रव्यलिंग नहीं है तुम्हारे इसमें लिखा तुम्हारे सिद्धक विधान में, द्रव्यलिंग बिन कर्म खपाई और भावलिंग बिन शिव पद जाई, यूं अयोग कारज नहीं होई, तुम गुण कठिन कठिन है सोई। क्या अर्थ है कि द्रव्यलिंग के बिना जैसे मोक्ष नहीं होता और भावलिंग के बिना कर्म नहीं करते हैं, दोनों को अनिवार्य बताया ना, जैसे दो काम असंभव हैं, द्रव्यलिंग के बिना कोई मोक्ष नहीं जा सकता, भावलिंग के बिना कर्म नहीं खप सकते, जैसी ये दो बातें असंभव हैं, ऐसा ही असंभव तुम्हारे गुणों का कथन करना है। यहां तो उसमें लिया, ऐसा नहीं है कि जाते उनने तो माना ना कि दोनों की भाई दोनों को अच्छे अर्थ में लिया है। हम तो एक को गाली समझने लग गए और दूसरे को महिमा समझने लग गए। अभी हमारे जय बोलने में भी कंजूसी करने लग गए, भावलिंगी संतों की जय है। क्या है ये, क्या है, क्या बोलने की जरूरत भावलिंगी संतों की जय? उसमें वही बू झलकती है कौन, कि जो आपके अंदर अज्ञान भरा हुआ है, क्या बोलते हैं फुकन भगवान का, तुम अंत में जय बोलते हो ना, क्या बोलते हो, क्या बोलते हैं, बोले तुम्हें की 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 लगा देते हो, नो नो गुजराती में नो बोलते हैं ना, दोनों नो जय क्या बोलते हैं सब, लेकिन क्या क्या जरूरत है, वो सिद्धों की क्यों नहीं बोल सकते, सिद्धों नी क्यों बोलते हो, हाँ हाँ जिनवाणी मात नो जय, मात मात कहाँ आ गई, ये माता होती ना अपने यहां, तो जिनवाणी माता की जय नहीं बोल सकते, जिनवाणी मात की जय, अरे बोलो गुजराती लोग उसमें नो लगाते हैं, मात नो, इसलिए वो होता है। अब तुम्हारा आधी गुजराती घुस गई, गुजराती माने अध्यात्म नहीं होता है, किंतु मैं नो लगा दिया तो अध्यात्म हो गया है? ये होता है कि तुम्हें हिंदी नहीं आती है ढंग से, आपकी होती तो ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे प्रयोग क्यों करते है? भगवान महावीर में भगवान महावीर की जय नहीं बोल सकते की नहीं आती है। मेरी कहना का अर्थ है कि हम उसका पूरा भाव सही ढंग से नहीं समझते। आप गुजराती बोलिए ना, पूरी गुजराती बोलिए, कौन मना करता है, पूरा वाक्य बोलिए, समझे ना, मुझे रोज ही ना खटकता है तुम्हारा, इसलिए आज मेरे को कहने का विकल्प आ गया। तो ये द्रव्यलिंग अपने यहां उतनी ही महिमाबंद शब्द है, ख्याल में है ना, जितना महिमाबंद भावलिंग शब्द है, वो तो ये एक ही मुनिराज, जो सच्चे मुनिराज, एक ही जो सच्चे मुनिराज हैं, ये सब हम अपनी इस भावलिंग नहीं बोला गया, हम बोले सच्चे मुनिराज जी, क्यों मुनिराज तो सच्चे ही होते हैं, दो भेद भेद का गुराज है, मुनिराज तो सच्चे ही होते हैं, नमो का मंत्र में तो कहीं भेद नहीं डाला, कितनी सरलता से लिखा नमो लोग ये सब साधुम, तो लोक के सब साधुओं को पहुंच गया है? कौन जटाधारी कटाधारी सब कम्बलधारी क्यों सबको साधुओं को पहुंच गया है? कि नहीं हमारे यहां जो परिभाषा है साधु की वो ही आएंगे भाई साहब, आप घबराओ मत, वो सच्चे जो साधु हैं वे ही आएंगे। आपको ये डर लगता है कि कोई नकली साधु ना घुस जाए उसमें, ऐसा नहीं होगा, सहज सहज मेरा मतलब मेरे कहने का अर्थ यह है कि पंच परमेश्वर जी की हम जय बोल रहे हैं तो ऐसा बोलो कि सच्चे अनंतों की जय, सच्चे सिद्धों की जय, संत में भेद डाल दो, दूसरा भेद डालने की जरूरत क्या है? मेरे कहने का मतलब यह है जब आप परोक्ष ही बोल रहे हो, किसी का व्यक्तिगत नहीं बोल रहे हो, सामान्य तरीके से ही बोल रहे हो, तो उसमें भी एक तरीके से हम दूसरों को चिढ़ाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि जैसे जी हमको बात करने के लिए इस शब्द को जोड़ रहे हैं, इसलिए कहता हूं मैं, माने हमको नुकसान होता है इस वितरागी तत्व ज्ञान को कि प्रचार प्रसार में नुकसान होता है और उसका विशिष्ट अर्थ है ही नहीं, बल्कि हम उसका सही अर्थ नहीं समझते हैं तो हमारा अज्ञान ही घोषित होता है। तो अब देखिए कि वो कहते हैं ज्ञान और ज्ञेय का भेद, ज्ञान और ज्ञेय का भेद का मतलब ये है कि ज्ञान ज्ञेय तो नाम जानने की वजह से ही पड़ा, उसका हमने किसी ने जाना ना इसलिए उनका नाम ज्ञेय पड़ा, तो जानने मात्र से वो हमारे ज्ञान में शामिल नहीं हो जाते। और ज्ञान ने गे को जाना तो ज्ञान गेयों में भी नहीं रह जाता है, दोनों की सत्ता एकदम सेपरेट रहती है। और इसका भरोसा हमें 24 घंटे चित्त में रहना चाहिए श्रद्धा के लेवल पर। उसकी बात है कि ऐसा यदि हो जाएगा तो हम फिर क्या करेंगे, ये राग द्वेष का अभाव होकर हम सत्य हो जाएंगे। अब ये भी समझ लेना कि राग द्वेष का माने कौन, अनंतानंदी राग द्वेष का होगा। ये अध्यात्म में अनंतानंदी राग द्वेष का अभाव होता है तो उसे राग द्वेष का ही अभाव कह देते हैं। यदि खोल के करेंगे तो उसका अर्थ ये है, हम श्रद्धा के लेवल पे हुआ है अभी तो वो, हम जो जय बोल रहे थे खुद ही राग आया ना हमको भगवान की भक्ति का, उसमें ही बोल रहे हैं। वो जो बोलते हैं वो श्रद्धा के लेवल पर उसके अभाव की बात बोलते हैं। देखो बनारसी दास का छंद बोलो, ये बहुत बढ़िया है ना। दो तीन छंद में दर्शन हुए चात्र हुए का पूरा पहुंचाकर मोक्ष तक पहुंचा दिया। अब उसकी चर्चा वो आगे करने वाले हैं ना गाथाओं में, इसलिए अब ये गाथाएं पढ़ो, ये 6 गाथाएं हैं, बिल्कुल अलग हैं।
दर्शन नान चरितम किंचि विनत्ति द्वचेतने विषये तम्मा किं घादयते चेदयिदाते सुविषयेषु। दंशन नान चरितम् किंचि विनत्ति द्वचेतने कम्मे तम्मा किं घादयते चेदयिदातं निकम्मम्मि। दंशन नान चरितम् किंचि विनत्ति द्वचेतने काये तम्मा किं घादयते चेदयिदाते सुकायेषु। नानस्य दंशनस्य भणिदो घादो तः चरितस्य नवितै पोगल दौवस्य को विघादो दुने दिट्ठो। जीवस्य जे गुणाके नत्थि खलु ते परेषु दव्येषु सम्मा सम्मा दिट्ठिस्स नत्थि रागो दुविषयेषु। रागो दोषो मोहो जीवस्वे अनन्न परिणामा एदेन कारणेन दु सद्दादिषु नत्थि रागादि।
Yeah.
फिर बिल्कुल विषय बदल गया है। वो कहते हैं तो आत्मा का घात किया, घात किया कर्मों ने, अरे आत्मा ने कर्मों का घात किया। तो कहते हैं कि आत्मा कैसे कर्मों का घात कर सकता है, तो दो द्रव्य हैं, ये तो अलग अलग है। आत्मा अपने सम्मा दर्शन ज्ञान चारित्र का घात कर सकता है, अपने मिथ्या दर्शन मिथ्या चारित्र का भी घात करके सम्मा दर्शन ज्ञान चारित्र पैदा कर सकता है। देखो इसमें टीका में जरा ज्यादा स्पष्ट है नीचे, जो जिसमें होता है वह उसका घात होने पर नष्ट होता ही है, अर्थात आधार का घात होने पर आधे का घात हो ही जाता है। जिस प्रकार दीपक के घात होने पर प्रकाश नष्ट हो जाता है, दीपक टूट जाए, वो पुराने जमाने के दीपक लेना तो गारंटी से उजेला भी खत्म हो जाएगा। वास्तव में दीपक किसे कहते हैं आप जानते हो? वो जो सकोरा है मिट्टी का, उसका नाम दीपक नहीं है। उसमें जो तेल पड़ा है उसका नाम भी दीपक नहीं है। उसमें जो बाती पड़ी है उसका नाम भी दीपक नहीं है। जो वो लौ जल गई ना, उसका नाम दीपक है। हम तो वो जब नहीं जलती होती है तब भी उसे दिया बोलते हैं, है ना, कि ये दीपक है। तो कहते हैं कि वो लौ खत्म होगी तो उजेला भी खत्म हो जाएगा। उजेला खत्म होगा तो उसका मतलब लौ खत्म हो गई। लेकिन घट दीप, दीप घट, अब दीप घट क्या है कि अब आज तो ये कांच आ गए हैं इसलिए वे सब लगे रहते हैं ऊपर। पुराने जमाने में एक घड़े में दीपक को रख देते थे जिससे कि हवा न लगे और बुझ न जाए वो, और तो थोड़े थोड़े उसमें छेद भी कर देते थे चारों तरफ से कि वो प्रकाश बाहर निकले। अब वो घड़े में दीपक रखा है, उसे घट दीप बोलते हैं, उस हवा से वो बुझे ना, इसके लिए। तो कहते वो घड़ा फूट जाए तो जरूरत नहीं, उजेला खत्म नहीं होगा, क्योंकि घड़ा का जैसा संबंध दीपक से है वो दीपक का प्रकाश से नहीं है। वैसा प्रकाश और दीपक का तो अभिन्न है। तो आत्मा और ज्ञान दर्शन, आत्मा और ज्ञान दर्शन तो आत्मा जैसे दीपक है और ज्ञान दर्शन उसका प्रकाश है। और ये शरीर कैसा है कि आत्मा जैसे दीपक है और शरीर घड़ा है जिस घड़े में ये दीपक रखा है, समझ गए ना। कहते दीपक और घड़े के साथ, क्योंकि दीपक घड़ा नहीं है और घड़ा दीपक नहीं है, क्योंकि जब एक फूटेगा तो दूसरे को फूटना चाहिए। यदि दोनों एक ही हैं, एक ही के हैं, तो एक के नष्ट होने पर दूसरे का नाश होना चाहिए। तो कहते परद्रव्यों का अभाव, गेयों का अभाव होने पर दर्शन ज्ञान चारित्र का अभाव नहीं होता। सिद्ध भगवान ने पहुंच गए तो दर्शन ज्ञान चारित्र हैं, शरीर के आशय से वे कहां थे। और हम जब सम्मा दर्शन ज्ञान चारित्र की बात करते हैं तो सारे शारीरिक क्रियाएं, ये चारित्र क्या है, ज्ञान में तो महावीर क्या है, मुझे प्रधान नग्न नंबर ऐसा अपने वो सब बताते हैं, बाहर की क्रियाएं सब है? और वो शुभ भाव। इसलिए महाशास्त्र तत्वार्थ सूत्र में ये अनुवृत्त और महावृत्त का प्रकरण आश्रव तत्व में सातवें अध्याय में रखा, और वृत्ति समिति गत गुप्ति गुप्ति धर्म अनुप्रेक्षा इनको नौवें अध्याय में रखा, वो संवर का है। और पूरा एक अध्याय लिख दिया इन वृत्तों के लिए, अनुवृत्त और गुणवृत्त और शिक्षावृत्त, इनकी भावनाएं और इनकी ये पूरा अधिकार आश्रव के अधिकार में रखा है। अब देखिए एक है आश्रव, एक है संबर। अब वहां पर यदि मान लो किसी की चर्चा आवे तो वहां हमें वो संबर रूप में देखना चाहिए। छोटामल जी ने देखा है, उन्होंने कहा ना दो शुभ भाव रूप गुप्ती या समिति है, वो शुभ क्रिया रूप वो तो ऐसे ही है जैसे चार हाथ जमीन देख के चलना। और ये क्या है, ईरिया समिति। अब ये ईरिया समिति कहां धर्म रही, वो तो मुनिराजों के ऐसी, वो तो इसकी बाहर क्रिया तो जैसे अनुताबिक में बाहर क्रिया है वैसी ही है, ऐसा लिखा टोडा मन जी ने। लेकिन उसके अंदर की जो शुद्धि की बात है वो उसकी बात है। अभी देखिए महाविदों में भी हम लेंगे तो महाविद में भी तीन चीजें हैं। एक तो जो उनके नियम है बाहर के नरम निगम्बर दशा होना, कैसे पालन करना उनका, ब्रह्मचर्य व्रत पालन करना, कैसे अहिंसा महाविद, और फिर ऐसी वो क्रिया तत्त संबंधी शुभ भाव, और ये दो तो हुए वो व्यवहार समझ लो दीर्घलिंग वाले महाविद। और अब तीन कषाय का अभाव रूप है वो एक तरीके से भाव महाविद है, वो धर्म है। माने मुनि होने के लिए महाविद्धि होने के लिए अकेला ये जो बाहर की जो शर्तें बताई हैं वे जरूरी नहीं है कि वे तारा जमीन देख के चल रहे कि नहीं चल रहे, उनके तीन कषाय का अभाव है कि नहीं है, कौन तीन के अनुदानबंदी प्रत्याख्यान और अप्रत्याख्यान, वो मुनि धर्म में वो इतनी सब चीज शामिल है। और उसी जो उनने खुद दो हिस्से कर दिए, एक आश्रम अधिकार में और एक सम्मत अधिकार में, क्या कि जब तीन कषाय का अभाव रूप दशा होती है तो बाहर गांस लगा ही नहीं सकता वो। जब कपड़ा पहनने के लिए गांस लगाना जरूरी है ना, तो गांस नहीं लगा सकता, मतलब वो उसके अंदर अंदर की गांस निकल गई तो बाहर गांस कैसे लगे। ये तो अंदर जब गांस होती है तो बाहर गांस लगती है, समझे। तो अभी देखो उनमें भले ही दो चीजें हैं, अब वो एक जगह दोनों होना अनिवार्य है एक साथ, वो कहते नहीं सब व्यवहार से तो हो गए वो मुनि और निश्चय वाला नहीं हो गया, ऐसा नहीं होता, ये दोनों एक साथ ही होते हैं, दोनों एक साथ ही होते हैं, होना चाहिए। देखो जो जिसमें होता है वह उसका घात होने पर नष्ट होता ही है, अर्थात आधार का घात होने पर आधे का घात हो ही जाता है, जिस प्रकार दीपक का घात होने पर प्रकाश नष्ट हो जाता है, इसी प्रकार जिसमें जो होता है वह उसका नाश होने पर अवश्य नष्ट हो जाता है, अर्थात आधे का घात होने पर आधार का घात हो ही जाता है, जिस प्रकार प्रकाश का घात होने पर दीपक का घात हो जाता है। देखो दो तरह से कहा है, दीपक माने वो लोम, वो है आधे, और वो जो उजेला वो है आधार, इसके आधार पर है ना, वो आधार होगा, मतलब इन दोनों में आधार आधे संबंध है, तो आधार आधे संबंध जिनमें है उनमें से एक नष्ट हो जाए और दूसरा नष्ट नहीं हो ऐसा नहीं हो सकता, ये नियम बताया उन्होंने। आधार के नष्ट होने पर आधे नष्ट हो जाता है और आधे के नष्ट होने पर आधार नष्ट हो जाता है, अगर प्रकाश नष्ट हो गया और दीपक नहीं हुआ ऐसा नहीं होता, वो तो दोनों में से कोई एक नष्ट होगा तो दूसरा भी नष्ट होगा, अब व्यवहार से आधार वो घड़ा हो जाता है तो घड़ा नहीं फूटेगा, दीपक बुझ जाएगा उजेला चला जाएगा तो घड़ा बना रहेगा, और कदाचित घड़ा फूट जाए तो भी वो उजेला बना रहेगा। तो कहते हैं आत्मा का जो इनके साथ संबंध है, दर्शन ज्ञान चारित्र का आत्मा के साथ इनका आधार आधे संबंध है, शरीर के साथ नहीं है, तो शरीर के गड़बड़ होने से एक ऐसे संबंध हो जाएगा, जैसे अभी अपने लोग कहते हैं ना कि हमने 10 साल का फलाना व्रत कर लिया अब हमारे बस की नहीं रही, क्यों, कोई भी व्रत शुरू में बस की होता है और बाद में बस की नहीं होता, ये कैसे हो सकता है, मेरी बात समझ ना, कैसा जब तुमने 10 साल प्रैक्टिस नहीं की थी तब तो तेरे बस की था वो करना, अब 10 साल की प्रैक्टिस हो गई और अब कहता है कि मेरे बस की नहीं रहा, इसका मतलब तुमने शरीर की क्रिया को ही वो वृत समझा है, क्योंकि अभी तो शरीर कमजोर पड़ा है, आत्मा तो मजबूत हुआ होगा ना 10 साल के वृत करने से, तो आत्मा में वो शक्ति नहीं रही है, क्या मतलब है बोलिए, अपने यहां ऐसी सुविधा है फिर मुनि धर्म का भी उद्यापन कर देवे, कभी जब तक शरीर में ताकत थी मैं मुनि रहा और अब मैं उसे उद्यापन कर देता हूँ और कपड़े पहन लेता हूँ। तो कोई बिल्कुल छोड़ा कैसे जा सकता है लेकर के, वो तो जो बाहर का जो क्रियाकांड होता है वो छोड़ा जाता है। जैसे कि अपना पहले लिखते थे ना तो लाइन खींच के लिखते थे, अब तो काफी लेन वाली ही आती हैं, लाइन खींच खींच के लिखते थे। क्यों? कि वैसे लिखते थे तो लाइन सीधी नहीं आती थी, तो हमारी बाद में ऐसी प्रैक्टिस हो जाती है कि बिल्कुल सीधी लाइन आती है, तो लाइन खींचने की जरूरत क्या है। तो लाइन खींचना बंद करते हैं लेकिन सीधी लाइन लिखना बंद नहीं करते। हम तो पूरे ही वृत्त की छुट्टी कर देते हैं। वो ऐसा कौन सा वृत्त है कि जो ले करके छोड़ा जा सकता है, और उसमें शक्ति होता है ना, उद्यापन की शक्ति न हो तो वृत्त दूनों कहियो जो। उद्यापन की शक्ति माने क्या, कि कोई 10 साल तक वृत्त किया, 10 दिन की उपवास कर करके, और फिर उद्यापन में क्या करते हो कि 1000-2000 रुपया खर्च करते हैं, कुछ स्वास्थ्य बांट देते हैं, कुछ लोगों को भोजन करा देते हैं, कुछ एक विधान करा देते हैं, मुझे उद्यापन हो गया। अब उद्यापन की शक्ति ना हुए माने माने ये इसमें 1000 रुपये की व्यवस्था नहीं है, तो 1000 रुपये की व्यवस्था नहीं है तो फिर तुम्हें दूना करना पड़ेगा, 10 साल और करना पड़ेगा, बहुत महंगा सौदा है ये तो। तो दूना करना पड़ेगा। अरे भाई, उद्यापन की शक्ति ना हुए का अर्थ ये है, यदि तुम्हारा वृत्त हमने पक्का करने के लिए किया था, यदि कचास रह गई हो तो और 10 साल करो, और वो पक्का करो पहले, वृत्त छोड़ना नहीं पड़े। वो जो लाइन खींचने वाली पद्धति भले ही छूट जाए, आप समझे ना, जो जिस उस वृत्त को पालन करने के लिए जो उन्होंने बाहर से क्रियाएं ओढ़ी थी, वे क्रियाएं भले ही छूट जाएं, लेकिन वो वृत्त अंदर में रहना चाहिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, ब्रह्मचरी वृत्त ले लू। कोई कहे कि हमने ब्रह्मचरी वृत्त 10-20 साल पाला, अब हमारा बस की नहीं रहा, क्यों कह रहे बुढ़ापे में बस की नहीं रहा, जवानी में बस भी था, तुमने कहा तो मैंने ब्रह्मचरी वृत्त में देखा था कि मुझे एक टाइम रोटी खाना पड़ती है ना, और हमको दिल चलता है, अब तो हमको शाम को भी चाहिए कम से कम दूध हो जाए, फल खा ले, तो तुमने ब्रह्मचरी का वो एक टाइम खाने को समझा था। क्या समझा, मैंने उदाहरण जानबूझ के ऐसा दिया है कि हम कैसे कह सकते हैं कि बुढ़ापे में शक्ति नहीं रही और जवानी में शक्ति थी। ऐसा ही सब वृत्तों का है, वो वृत्त जो चीज है वो बाद में शक्ति नहीं रहे ऐसी क्यों, ऐसा सवाल नहीं हो सकता है। वो वृत्त के माध्यम से जो हमारी वितरागता बढ़ी है कि जो भी हमारा वो है वो तो रहता ही है, वो थोड़ा उसका ऊपर का जो क्रियाकांड होता है वो उसकी बात है, है? उद्यापन की शक्ति का अर्थ ये है, मेरे कहने का अर्थ ये है। इसलिए कोई वृत्त छोड़ने के लिए नहीं लिए जाते हैं, जो विश्वधर्म जी ने लिखा ना कि बहुत सावधानी से प्रतिज्ञा लेना, क्योंकि प्रतिज्ञा नहीं लेने का कोई दंड नहीं है और लेकर भंग करने का बहुत दंड है। लिखा क्या नहीं लिखा, ऐसा लिखा विश्वधर्म जी ने। दर्शन ज्ञान चारित्र की जो बात चल रही है, जो जिसमें नहीं होता उसका घात होने पर वह नष्ट नहीं होता, जिस प्रकार घड़े का नाश होने पर घट प्रदीप घड़े में रखा हुआ दीपक का नाश नहीं होता, इसी प्रकार जिसमें जो नहीं होता उसका घात होने पर वह नष्ट नहीं होता, जिस प्रकार घट दीप के नष्ट होने पर भी घट का नाश नहीं होता। इसी न्याय से आत्मा के धर्म कौन, दर्शन ज्ञान और चारित्र पुद्गल द्रव्य के घात होने पर भी नष्ट नहीं होते, और दर्शन ज्ञान चारित्र का घात होने पर भी पुद्गल द्रव्य का नाश नहीं होता, क्योंकि पुद्गल द्रव्य में आत्मा का धर्म रहता ही नहीं है। सन्ना दर्शन ज्ञान चारित्र शरीर कमजोर पड़ जाएगा तो फिर संबंधासन नहीं रह सकता, शरीर कम मजबूत है तो संबंधासन रहेगा, ऐसा है। तो उसने तो कुछ क्रिया को संबंधासन मान लिया है, अब वो क्रिया उससे नहीं होती है। हम क्या करें, हमारा हाथ ही नहीं उठता है तो भगवान की मैं पूजा भक्ति करूंगा, तो वो कहते आप तो मेरा हाथ ही नहीं उठता तो मैं तो पूजन छोड़ दूंगा। अरे पूजा भक्ति काय का नाम था, गुणेश अनुराग भक्ति, भगवान के गुणों में जो अनुराग होना उसका नाम भक्ति थी, तो वो तो रहेगी। हाथ नहीं उठा तो हाथ थोड़ी पूजा करता था, भक्ति भगवान की तो हाथ थोड़ी करते थे, गला थोड़ी करता था, क्यों अपने चित्त में उनके स्वरूप के प्रति जो हमारी श्रद्धा थी वो भक्ति थी, वो कैसे छूट सकती है। माने एक क्रिया विशेष से वो जुड़ी नहीं है, मेरे कहने का मतलब। हम ऐसे ही समझते हैं, अभी हमने पीला दुपट्टा नहीं ओढ़ पाया, नहीं बैठ पाया, इस थाली का माल उस थाली में ट्रांसफर नहीं कर पाया तो हम पूजा नहीं, हम पुजारी नहीं, हम पूजा नहीं करते हैं। हमने पूजाएं लिखी हैं, हम पूजा नहीं करते हैं, हैं? ये एक लाइन लिख नहीं सकते, ये पुजारी हो गए। पूजा किसे कहते हैं, जानते ही नहीं है। तो आप विचार करो गंभीरता से, खत्म करता हूं दो मिनट में। जब मैं इंदौर से यहां आया था जयपुर सबसे पहले, वहां छोड़ के जयपुर आने के लिए, तो फिर मैंने ये सोचा तो इंदौर के आसपास के तीर्थ की यात्रा कर लो, तो फिर यहां कभी आना होगा या नहीं होगा, तो मैं 5-7 दिन की छुट्टी लेकर के सब तीर्थों की यात्रा पर निकला गया। तो हम मक्सी जी गए, तो मक्सी जी में 2 घंटे पूजा करने का अपने दिगंबरों का अधिकार है, तो बाद में श्वेतांबर लोग आ जाते हैं। हम लोग नहा धोके गए और श्वेतांबर मंदिर में वहां पूजा, उस वक्त बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहती है मूर्ति, तो वो हम पूजा कर रहे थे, तो पुजारी हमारे पास बार बार आए, जल्दी करो जल्दी करो, क्यों क्या हो गया, अरे अभी अपना समय खत्म हो जाएगा, उनका हो जाएगा तो आपकी पूजा अधूरी रह जाएगी। मैंने कहा बेटा जब आएंगे तब आएंगे और नहीं करने देंगे, तुम अभी नहीं करने दे रहा। अरे मुझे शांति से करने देना पूजन, जब तक अपना समय है तब तक करने दे, तू क्यों दूसरा कर रहा है, तूने एक दफे बता दिया हमें करने दे। बोले भाई साहब आपकी अधूरी रह जाएगी इसलिए कहता हूं मैं। मैंने कहा मेरी पूरी हुई कब है, मैं सच बोल रहा हूं आपसे, मैंने पूजने कभी याद नहीं की, लगभग सब पूजने याद है, कैसे होगी ऐसे थोड़ी होगी, तीन ही लोग हो कैसे गई। लेकिन क्या कि जब भी ये पूजने में पढ़ता हूं कि सुनता हूं तो उसकी एक एक पंक्ति पर एक एक अक्षर पर बहुत गंभीरता से विचार करता चलता हूं, और कहीं कोई प्रसंग ऐसा आ जाता है कि जहां वो मेरा उपयोग अटक जाता है, तब तक मैं तो मान लो चंदन के छंद पर मेरा उपयोग अटक गया, समझना, और जब तक आप पहुंच गए दीप तक तो बगल वाले खड़ा होता है ना तो मुझे डिस्टर्ब करता है, चलिए हाथ में पकड़ाता है, तू तो करना अपना, मैं उठा सकता हूं अभी मेरा हाथ कमजोर थोड़ी हुआ है, कि अरे आपको पता नहीं तुम अभी वहीं चंदन पे ही हाथ में लिए खड़े हो, अब तो दीप तक पहुंच गए। अरे भाई अब मैं तो वो जो शब्द है उस पर मुझे विचार करने देना, ऐसे ऐसे मुझे सब पूरी याद हो। क्यों कल दादा अर्थ बता रहे थे, न तो कोई चंदन न तो कोई केसर, पूजन से भव पार भयो है, क्या अर्थ उसका, कि चंदन चढ़ाने से और केसर लगाने से आज तक किसी को मोक्ष नहीं हुआ, न तो कोई चंदन न तो कोई केसर, पूजन से भेंट की ये भव पार दो, इनके भेंट करने से आज तक कोई भव पार हुआ नहीं, क्या कह रहा है वो कभी, आपके चित्त अटका कहीं, 2-5 मिनट लगाया आपने कभी सोचकर किसी पंक्ति पर, तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि इस तरह हम शांति से जो वो अपने चित्त में भगवान के प्रति गुणों के प्रति जो अनुभूति है वो पूजा है, वो हमारी कदे कदम हो जाएगी। हाथ हो जाए तो हो जाए, शरीर हो जाए तो हो जाए। आज मान लीजिए कल हमारी आंखें काम कर दे रहे हैं, नहीं पढ़ पाए, कान तो हम टेप सुनेंगे तो हमारे कान भी कम सुनाई देने लग जाए, क्यों? तो फिर तो हमारा स्वाध्याय बंद हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? जिंदगी भर खाद छापिएगा, जिंदगी भर खाद छापिए क्या? हमारा तो स्वाध्याय निरंतर ही चलता है, चलेगा ही और निर्विघ्न चलेगा, क्योंकि अभी आपकी आवाज आती है तो डिस्टर्ब हो जाते हैं, कुछ दिखाई देता है तो डिस्टर्ब हो जाते हैं, सुनना कोई दिखाई दे रहा और ना कोई सुनना, तो अपनी धन में ही रहेंगे ना, फिर तो कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है ना। मतलब असली धर्म कभी छोड़ने की चीज नहीं होती, वो छूटता नहीं है। रत्नत्रय नाम का जो धर्म है वो कहते हैं वो उससे साथ नहीं जुड़ा, किसके साथ? कि जिसके नाश होने पर भी वो का नाश ना हो। यदि उसका आधार आधे संबंध बनेगा तो उससे ही बनेगा कि जिसके नाश होने पर वो गारंटी से नष्ट हो जाए, समझे ना, और जिसके नाश नहीं होने पर वो नष्ट नहीं हो। तो अब ये बता रहे हैं कि सम्मा दर्शन ज्ञान और चरित्र से ये बाहर की क्रिया से कुछ लेना देना नहीं है। तो ये व्याख्याओं के माध्यम से अभी और अपन कल विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी कल से अभी प्रचार मेरा शाम को होगा, अब पौने 8 बजे से होगा कि 8 बजे से हो जाए तो तुम लोग नक्की करके बताना, लेकिन अभी आज तक सुबह तो अपनी चिंतक विधान की वजह से रखा था, इन विद्यार्थियों को सब कॉलेज जाना पड़ता है, तो कल शाम से मैं इसी समय सार को आगे चालू रखूंगा।